Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 5, Verse Number 7. Kripaya, in atyant hi pavitra shaktiyon ko jo ki Bhagavan ke mukharvind se nikle hue hain, mere saath saath ucharan karne ka prayas kijiye. Bhagavan kehte hain, Yoga yukto vishuddhatma, vijitatma jitendriyah. सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते शब्दों का अर्थ देखिए। योगयुक्तो विशुद्धात्मा, योगयुक्तो अर्थात जो योग में लगा रहता है यानी भक्ति के भक्ति में लगकर कार्य करता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा, विशुद्ध आत्मा का मतलब होता है शुद्ध आत्मा। विजित आत्मा मतलब आत्म संयमी, जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सर्वभूत अर्थात समस्त जीवों के प्रति, आत्मभूत आत्मा अर्थात दयालु। कुर्वन अपि, कुर्वन अपि का मतलब होता है कर्म में लगे रहकर भी, न लिप्यते न माना कभी नहीं, लिप्यते अर्थात बंधता है। अनुवाद, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उससे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से श्लोक को समझाते हैं। वे कहते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोचता है। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियों तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती हैं, वह बलिबंधी जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है। अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रण होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ना ही उसे कृष्ण से संबंधित कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर प्राप्त होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनना चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता, ना ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य ना होते हो, अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावनाभावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्रित हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई नहीं मारा जाएगा। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए हैं, अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए बुद्धि से समस्त भौतिक विचारों और मन से भौतिक आसक्ति का परित्याग करके गुरु और कृष्ण के श्री चरणों में कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागजातं सह गणरघुनाथ वितन्तं सजीवं साध्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गारण्ये श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता माते की जय हो। अत्यंत ही सुंदर रूप से भगवान भक्ति योगी के मन की जो अंतरिंग चेतना होती है, यानी कि वो किस प्रकार से मनन करता है उसके विषय में, क्योंकि अर्जुन ये जानना चाहता था कि उसे कर्म योग करना है अथवा संन्यास योग करना है। तो भगवान ने बता दिया कि देखो अर्जुन, वैसे तो दोनों ही मुक्ति के लिए सही हैं, परंतु तुम्हारे लिए तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, लेकिन आपके लिए कर्म संन्यास से कर्म योग बेहतर है। आपको कार्य करना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि कार्य का त्याग करना ही संन्यास है, लेकिन भगवान हमें बताते कि नहीं, कार्य को त्याग करना संन्यास नहीं है। वास्तव में कार्य के अंदर जो सकाम बुद्धि होती है ना, अपने फल प्राप्त करने की इच्छा, वो बंधन का कारण बनती है। तो यदि आपके हृदय के अंदर कार्य केवल आप किस लिए कर रहे हो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, तो वो कार्य आपको बंधन, आपके लिए बंधनकारी नहीं बनता है। तो बंधनकारी नहीं बनना है तो समझो वो कार्य जो है वो भी संन्यास ही है। इसलिए भगवान ने बताया, यत सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगायरपि गम्यते। अगर आप ज्ञान योग से जो स्थान प्राप्त करते हो, वही भक्ति योग के जरिए भी प्राप्त करते हो, भक्ति के द्वारा कार्य करके। एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। तो जो सांख्य योग को और कर्म योग को एक ही दृष्टि से देखता है, वास्तव में वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। और भगवान ने कल 6 नंबर श्लोक में बताया, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुने ब्रह्म नचिरे आदि गच्छति। कि अगर कोई भगवान के साथ अपना योग नहीं बनाना, अयोगतः, अगर भगवान के साथ अपना योग नहीं स्थापित किया है, लेकिन फिर भी वो संन्यास ले रहा है, वो सब चीजों का त्याग करके, भाई ये सब मिथ्या है, मुझे संसार के चक्कर में नहीं फंसना है, मैं चला जाता हूँ, त्याग करके, सब कुछ त्याग करके यदि वो कर देता है, तो क्या होता है, दुःखमाप तो वो उसके लिए कष्टदायक होता है। और योग युक्त तो मुनिर ब्रह्म, लेकिन योग युक्त तो यानी जो भक्ति से कार्य करता है वो भी मुनि होता है, अचिरणादि गच्छति, और वो तो बहुत शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि यदि कार्य करने वाला भी मुनि है, वो भी यदि सन्यासी है, और मुनि का मतलब होता है चिंतक, वो मनन कर रहा है, तो आखिर वो किस चीज का मनन कर रहा है, मतलब ऐसा क्या, उसकी अंतरंग चेतना कैसी होती है, वो वास्तव में हृदय में क्या सोच कर कार्य कर रहा होता है, किस लिए कार्य कर रहा है। अगर वो सन्यासी है तो कार्य, अगर उसको, ये तो कर्मयोगी भी तो एक तरह का सन्यासी भगवान ने बताया ना, तो अगर वो सन्यासी है तो वो कैसे सन्यासी है, वो किस तरह से कार्य कर रहा है, तो उसके विषय में आज भगवान बहुत ही सुंदर बता रहे हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया। योग युक्तो यानी जो कर्मयोग में लगा है, जो भक्ति के साथ कार्य कर रहा है, उसके अंदर तीन क्वालिटीज भगवान ने बताई हैं। सबसे पहले वो विशुद्ध आत्मा है। विशुद्ध आत्मा का मतलब होता है उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। वास्तव में ये बुद्धि का कार्य होता है कि वो डिसीजन लेती है, लेकिन जीव गलत कार्य इसीलिए कर रहा होता है क्योंकि उसकी बुद्धि जो है वो विशुद्ध नहीं होती है, वो पवित्र नहीं होती है, इसलिए उसको गलत कार्य करने पड़ते हैं, है ना। क्योंकि पवित्र बुद्धि ही पवित्र डिसीजन ले सकती है, अगर बुद्धि अपवित्र है तो अपवित्र डिसीजन होगा, इसीलिए जीव फंसता है। लेकिन बुद्धि गलत है ना कार्य क्यों करती है या बुद्धि विशुद्ध क्यों नहीं होती है, वो आगे बता रहे हैं। विजित आत्मा, विजित आत्मा का मतलब होता है आत्म संयमी, यानी मन को स्थिर रखने वाला, है ना। कौन? जो भक्ति के साथ कार्य करता है, उसके अंदर तीन क्वालिटीज बताई, एक विशुद्ध आत्मा यानी उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, विजित आत्मा अर्थात अपने मन को कंट्रोल करने वाला होता है, और जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को जीतने वाला होता है। कितना सुंदर भगवान एक भक्त की व्याख्या कर रहे हैं कि जो भक्त योगी होता है, जो कर्म योगी होता है, जो भक्ति के साथ कार्य करता है, सबसे पहले तो वो अपनी इंद्रियों को, उसके बाद मन को, उसके बाद बुद्धि को कंट्रोल करता है। क्यों इन तीन चीजों के लिए भगवान ने बताया? इसलिए बताया क्योंकि ये तीन चीजें, तीन जगह ऐसी हैं जिनके लिए भगवान ने पहले बताया था। भगवान ने 3.40 में इन तीन स्थानों के बारे में बताया था। भगवान ने कहा, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते, कि देखो अर्जुन, इस काम के रहने की तीन स्थान हैं, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि, क्योंकि इन तीन स्थानों में काम वासना रहती है। लेकिन जो भक्त होता है वो क्या करता है, इन तीनों जगहों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। भगवान ने कहा विशुद्ध आत्मा यानी बुद्धि को कंट्रोल करता है, विजित आत्मा यानी मन को कंट्रोल करता है, जितेंद्र यानी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। वास्तव में कोई पूछ सकता है कि कितना कठिन है कि इंद्रियों को भी जीता जाए, मन को भी जीता जाए, बुद्धि को भी जीता जाए, ये तो बहुत ज्यादा कठिन है। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने अत्यंत ही सरल उपाय बताया कि क्योंकि भक्त की केवल एक ही इच्छा होती है, क्या, कि वो किस तरह से भगवान को प्रसन्न करे, और जब भगवान को प्रसन्न किया जाता है तो ऑटोमेटिकली ही सारी दूसरी चीजें भी प्रसन्न हो जाती है। जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी मानव हैं, जितने भी जीव प्राणी हैं, वो सब प्रसन्न क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये रूल है, है ना। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियों तथा जिस तरह से अगर वृक्ष को हम संतुष्ट करना चाहते हैं, पूरे वृक्ष को, तो फिर क्या करना, एक एक पत्ते को हम संतुष्ट करने का प्रयास तो नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, उसकी जड़ में जल देंगे तो सारा जो वृक्ष है वो संतुष्ट हो जाएगा। उसी तरह से यदि हमें अपने पूरे शरीर को प्रसन्न करना है तो आमाशय में भोजन डालने से समस्त शरीर जो है वो पौष्टिक हो जाएगा। उसी तरह से जब जीव भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है। तो यहाँ पर यह सोच सकते हैं हम कि हम जब भक्ति करने जाते हैं तो फिर लोग तो हमारे लिए, हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है कि जितने हम सीरियस हो जाते हैं ना भक्ति में, पहले क्या होता है, हम हमारे अंदर जितनी दिखावट होती है, जब तक हम प्योर नहीं हो जाते हैं तब तक सारी रुकावटें होती हैं। लेकिन जैसे जैसे करते 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 हृदय बहुत पवित्र हो जाता है, फिर सारी रुकावटें भी रुकावटें नहीं हो जाती हमारे लिए। फिर यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, अभी इसको पहले पढ़ते हैं फिर सर्वभूतात्मा के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने कहा कि चूंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, वो क्या सोचता है कि किसी के लिए भी उसके हृदय में वैर भाव होता ही नहीं है, वो सोचता ही नहीं है कि कोई मेरा शत्रु हो सकता है। प्रहलाद महाराज इतना कष्ट दिया उसके पिता ने उसको, पग पग पर यातनाएं, लेकिन फिर भी वो भगवान से कह रहा है भले ही मेरा पिता राक्षस है परंतु आप उस पर कृपा कीजिए। जब ध्रुव महाराज की जो माता थी सोतेरी माता, उन्होंने उसे अपने पिता की गोद में भी बैठने नहीं दिया, लेकिन वो जा रहा नहीं था वैकुंठ में, बोला नहीं मेरी माता को पहले आप मुक्त करो उसके बाद में जाऊंगा। तो वो हर एक का दास सोचता है अपने आप को, हर एक का, तो फिर हर एक का प्रिय हो जाता है। तो समय शुरू में हो सकता है कठिनाइयां आती है भक्त के जीवन में, लेकिन समय के साथ, जैसे जगाई और मदाई, नित्यानंद प्रभु के साथ उन्होंने वैर भाव रखा, लेकिन जब उन्होंने उसके साथ कोई वैर भाव नहीं किया और चैतन्य महाप्रभु को बोला नहीं प्रभु इन्हें क्षमा कर दीजिए ये अज्ञानी नहीं जानते, तो वही दोनों भाई नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर गए। उसी तरह हरिदास महाराज को भले ही वो जो राजा के जल्लाद थे उसको सड़कों पर 22 हजारों पर जाके मार रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने भक्त की विनम्रता को देखा तो दोनों भी वो भी हरिदास महाराज के शरणों में आकर गिर गए। तो जितना जितना भक्त के अंदर प्योरिटी होगी, भक्त को अपनी साधना और अपनी प्योरिटी में परफेक्ट होना चाहिए, बाकी जो समाज उसका विरोध कर रहा है एक दिन ऐसा आएगा। भगवान क्या कहते हैं, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, श्री प्रभुपाद ने इसके लिए क्या लिखा है, सभी लोग उसे प्रिय होते हैं और वो सबका प्रिय होता है, यानी कि उसके साथ भक्त के साथ कोई कंटिन्यूस विरोध नहीं कर सकता। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो कार्य करता ही नहीं ना किसी की बुराई का, तो फिर सब लोग प्रसन्न रहते हैं, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है, बुद्धि एकदम प्योर होती है क्योंकि वो किसी का विरोध नहीं करती। और मन क्या करता है, मन सदैव कृष्ण में स्थित रहता है। मन वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला मन को कंट्रोल करो, अर्जुन घबरा गया, बोला नहीं कृष्ण ये संभव नहीं है, संभव नहीं बोला ऐसे बोला ये बहुत कठिन है। चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थी बलव दृढ़ तत्स्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्कर, ये तो हवा को वश में करने की भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। भगवान ने कहा हाँ ऐसा है परंतु अभ्यास से संभव है। इसका मतलब ये नहीं है भगवान ने ये नहीं कहा हाँ कृष्ण हाँ बाकी अर्जुन बहुत मुश्किल है तो ऐसा करो छोड़ दो नहीं करो, नहीं भगवान ने कहा भली मुश्किल है लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि यही तरीका है, आपको मन को वश में करना पड़ेगा, वरना तो ना आप अपनी बुद्धि को वश में कर सकोगे और ना ही अपनी इंद्रियों को वश में कर सकोगे, तो मन पर नियंत्रण करना आवश्यक है। और श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि उसका मन इसलिए नियंत्रण में रहता है क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है और उसके नियंत्रण होने से उसकी इंद्रियां संयमित होती है। क्योंकि मन क्यों स्थिर रहता है, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है। मन विचलित क्यों होता है, क्योंकि भौतिक आवश्यकताओं को प्राप्त करने की कामनाएं बढ़ जाती है, वासनाएं बढ़ जाती है। अब देखो उसने क्या किया, शुरू में पहले राम ने पढ़ा था ना कि काम के रहने की जगह है मन, मन भी है इंद्रियां भी है और वासना भी है, लेकिन मन पर जब काम अटैक करता है तो फिर बुद्धि और इंद्रियां जो है वो उसी हिसाब से कार्य करती है। मन पहले अटैक हो जाएगा फिर इंद्रियां बोलेंगी करना है इसको, हमें प्राप्त करना है, इसको स्पर्श करना है, इसको देखना है, और बुद्धि क्या करेगी उसको ऐसी योजना बना के देगी कि हाँ इस तरह से करो। लेकिन मन क्या, अगर मन भगवान के चरणों में स्थिर हो जाए, भगवान के हृदय के अंदर केवल भगवान का प्रेम होगा तो मन एकदम स्थिर हो जाएगा। तो भगवान ने कहा तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसा नहीं तुम मन को छोड़ दो कि हाँ ठीक है वो बेचारा तो वो तो है ना कंट्रोल करने वाला है ही नहीं इस तरह से, तो ऐसा है कि फिर हम कभी भी कृष्ण भावना में उन्नति नहीं कर सकेंगे। लेकिन जैसे मन भगवान के श्री चरणों में स्थिर हो जाएगा तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते फिर तो उसके विचलित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि विचलित क्यों हो रहा था, भौतिक चीजों में आसक्त था, लेकिन यदि वो भगवान के अंदर आसक्त हो जाएगा तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कैसे आसक्त हो जाता है भगवान के। यहाँ श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बताया कि ना ही उसे कृष्ण संबंधी कथाओं के अतिरिक्त और कुछ अपनी इंद्रियों किसी भी चीज के लिए उसको सोचने का अवसर ही नहीं मिल रहा है, वो कार्य भी कर रहा है। यदि वो शॉपिंग करने भी जा रहे हैं तो भी क्या लगता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं भोजन बनाऊंगी उसको खिलाऊंगी, और है ना ये अगर वो दुकान पे भी यानी शॉप पे भी कोई कार्य कर रहा है बिजनेस कर रहा है तो भी क्या कि इससे मैं ऐसा अपने परिवार को ऐसी सुविधाएं प्रदान करूंगा ताकि वो भगवान की भक्ति इजीली कर सके, और भगवान के भक्तों का इससे ना उनको दान देंगे या फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य। बुद्धि को इतना प्योर रखना है कि केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस ही उसके अंदर हो, और भक्त को तो दूसरे कोई कार्य करने के लिए अवसर ही नहीं मिलता है क्योंकि उसके पास भक्ति विषय इतने कार्य होते हैं, क्योंकि जब वो अपना भौतिक कार्य कर रहा होता है तब उसको यही होता है कि मैं जल्दी से ये कार्य कर लूं, उसके बाद मुझे श्रवण करना है, अपनी जपा कंप्लीट करनी है, भगवान की अना श्रृंगार करना है, भगवान के लिए भोजन बनाना है, प्रसाद अर्पण करना है, और संध्या आरती करनी है, मंगल आरती करनी, इतने सारे कार्य होते हैं कि उसकी बुद्धि के पास समय नहीं रहता है कि वो फिजूल चीजों के विषय में सोचे। उसके पास समय नहीं होता है किसी ऐसे स्थान पर जाने की इच्छा भी करे जो कृष्ण संबंधी नहीं होता है। अतः उसकी इंद्रियां वश में होती। क्यों वश में होती? क्योंकि वो कुछ भी ऐसा नहीं खाता जो कि भगवान को अर्पित नहीं किया गया हो, क्योंकि वो कुछ भी ऐसा नहीं देखता जो कि भगवान से संबंधित ना हो, क्योंकि वो कुछ भी ऐसा श्रवण नहीं करना चाहता जो भगवान से संबंधित ना हो। तो इंद्रियां वश में होती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां सहमत होती है वो किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। वास्तव में अपराध क्यों हो रहा है? क्योंकि इंद्रियां हमें उकसाती हैं कि ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए भौतिक चीजों के लिए। लेकिन यदि भौतिक आसक्ति नहीं है इंद्रियों को, मन भगवान के चरणों में है, तो फिर अपराध क्यों करेगा? तो इस पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर वो अपराध नहीं करता जो भक्त होता है, तो फिर अर्जुन क्यों अपराध कर रहे हैं? अर्जुन भी तो युद्ध कर रहे हैं, तो वो क्या कृष्ण भावना भावित नहीं है? क्या उसके मन इंद्रियां और बुद्धि संयमित नहीं है? वास्तव में यहाँ श्री प्रभुपाद ने बताया कि अर्जुन तो अपराध कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं। वास्तव में कर्मयोग यही तो है कि हम कृष्ण के आदेश का पालन करें, और यदि कृष्ण के आदेश का पालन करेंगे तो भगवान ने कहा न लिप्यते, वो कभी भी कुर्वन अपि न लिप्यते, आप कार्य करोगे परंतु फिर भी बंधन में नहीं फंसोगे यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद एक ना अत्यंत ही सुंदर शब्द है, देखो क्या बताए, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय, कि जो योग में लगा रहता है भक्ति के लिए उसके अंदर कितनी क्वालिटीज होती है, उसकी बुद्धि पवित्र होती है। क्यों पवित्र होती है? क्योंकि बुद्धि भगवान में स्थित होती है। भगवान ने कहा तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयान्ति, जो मेरी शरण में आ जाता है और अपनी सतत मेरा कीर्तन करता है, मेरा भजन करता है, मेरे विषय में श्रवण करता है और मेरे ही नाम का स्मरण करता है, तो उसकी बुद्धि को मैं पवित्र कर देता। उसके बाद विजित आत्मा, वो अपने मन को कंट्रोल करता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन को कंट्रोल करने का बहुत आसान फॉर्मूला है, मन मना, मन के अंदर मेरा विचार करो, मन मना भव मद भक्तो। अगर मन के अंदर मेरा विचार रहेगा तो मन कभी उसका प्रश्न ही नहीं उठता कि मन विचलित हो। जितेंद्रिय, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों को आप कैसे विचलित हुए बगैर बना सकते हो कि वो विचलित ना हो? तो भगवान श्री प्रभुपाद ने बताया कि इंद्रियों को यदि हम भगवान की सेवा में लगाए रखेंगे तो फिर वो विचलित नहीं होंगी। तो इस तरह भक्त का मन बुद्धि और इंद्रियां विचलित नहीं होती हैं, वो कंट्रोल में होती हैं। फिर आगे बताया सर्वभूतात्मा भूतात्मा, अत्यंत ही सुंदर और ये चौंका देने वाले शब्द हैं। इसलिए इनको मायावादी लोग कैसे कहते हैं? सर्वभूतात्मा भूतात्मा, यानी जितने भी आत्मा हैं उनकी उसकी आत्मा परमात्मा, वो सब सबकी आत्मा एक हो जाती है, मतलब उसकी आत्मा और सारे भूतों की आत्मा एक हो जाती है ना, ऐसे बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा का मतलब होता है कि वो दूसरे जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो चाहे किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, वो उनमें कोई भेद नहीं देखता, यानी वो सबकी आत्मा को एक सी देखता है, एक ही नहीं एक सी देखता है। तो इसीलिए श्री प्रभुपाद ने बताया कि वह सबों का प्रिय होता है और सब लोग उसके प्रिय होते। क्यों? क्योंकि भगवान बताते हैं ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, भक्त जानता है कि जितने भी जीव हैं वो भगवान के अंश हैं, वो भगवान के हैं। इसका मतलब है यदि ये भगवान के हैं तो उनसे तो मुझे कोई विरोध नहीं होना चाहिए ना। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो किस तरह से ऐसे कर सकते हैं, ये कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोचता है, कृष्ण से अलग नहीं सोचते हैं, ये सब भगवान के अंश हैं, तो फिर क्या होता है? इसका यही मतलब नहीं है सर्वभूत आत्मा भूत आत्मा वो सबका प्रिय होता है और सब उसके प्रिय होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक को वो पकड़ करके बोल दे आई लव यू मैं आपसे प्रेम करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। वास्तव में वो किसी से घृणा नहीं करता है, क्योंकि वो सबको भगवान, वो क्या सोचता है, ये भगवान के भोग्य है, ये सब जो भी है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है, वो जो भी कार्य करते हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, और फिर अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर उसका क्या कर्तव्य होता है कि जीवों को इस विस्मृति के इस अंधकार से बाहर निकाले और उनको ये स्मरण कराए कि आपका आपके जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति करना है, इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। तो उसका संबंध जीवों के साथ केवल इतना ही होता है कि वो जीवों को किस तरह से उसकी वास्तविक स्थिति से अवगत कराए और उसको जन्म मरण के चक्कर से बारंबार दुखों में गिरने से बचाए, इसीलिए वो दूसरों को प्रिय होता है, प्रेम से उनको संदेश देता है, भगवान का आदेश बताता है, क्योंकि उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है। एक भक्त के जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि जितने भी जीव हैं जो भगवान को बुलाकर इस भवबंधन में फंसकर बहुत दुख भोग रहे हैं, वो अपने रियल स्वरूप को, क्या स्वरूप है, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेन अनित्य दास, जब जीव अपने इस रियल स्वरूप को भूल जाता है तभी तो दुख भोग रहा है। तो फिर भक्त सबको अपने इस रियल स्वरूप को का ज्ञान कराता है और भगवान कहते हैं जो सबका सर्वभूतात्मा भूतात्मा, यानी कि वो सबको एक जैसा समझता है, सबसे प्रेम करता है, सब किसी से द्वेष नहीं करता है, और कुर्वन अपि न लिप्यते, भगवान ऐसे बताते हैं भगवद्गीता में, जिस प्रकार कमल का फूल वो भले जल में रहता है लेकिन कभी भी गीला नहीं होता, कीचड़ उस पर प्रभावित नहीं होता, उसी तरह भक्त जो है वो भले संसार में रहता है परंतु कभी भी भौतिक जो है भौतिकता उस पर हावी नहीं होती है, वो बल्कि उससे हमेशा भौतिक कार्यों से हमेशा अलग रहता है, और कुर्वन अपि न लिप्यते यानी कार्य करता रहता है लेकिन कभी भी इन कार्यों में लिप्त नहीं होता है, अर्थात कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अच्छे से भगवान के इन शब्दों को समझ सकूं और आप सबका आप सबकी अच्छी सेवा कर सकूं। हरे कृष्ण।